ஞானஸ்மிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனஃபலாச்சய சக்தோருமிளிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஃ. பஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபாசிந்துப்யைவ ச பதிதானம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமோ மகாபதன்னாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நம்னே கௌரஸ்திதே குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை சதாலே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய சதபக்தாய நமோ. கல் ஹம் கீதா கே குச் बातों को मैं बतला रहा हूं। आज गीता के कुछ उपदेशों की बातें बतला करके कल से भागवत की बातें बतलाऊंगा। सबसे ये पहल समझना चाहिए, कृष्ण साधारण एक व्यक्ति नहीं थे, वो स्वयं भगवान थे। वो साधारण एक व्यक्ति होते तो ये सब काम उनके लिए संभव पर नहीं था। आग जल रही उसको खा लिया, गोवर्धन जैसे पर्वत को एकदम साधारण रूप से उसको उठा लिया, वो मथुरा से द्वारका जाते समय पहाड़ पर चढ़े और वहां से छलांग लाई तो वहां से प्राय 100-200 मील दूर भगवान को शास्त्रों को मानते हैं वो देवता है, भगवान का ही भजन पूजन करते हैं। और इससे भी विपरीत यदि कोई व्यक्ति है उसको ध्वज प्रदान अशु कर देते। महाभारत युद्ध के पहले वो अत्याचार होते थे, स्त्रियों को पकड़ लेते संध्या के बहाने और उसको मनमाने ढंग से व्यवहार करते, दूसरों का राज्य हड़प लेते, न्यायुक्त तो कोई भी चीज है उस चीज को नहीं मानते। कृष्ण ने देखा था ये धर्म बंद हो जाए, ऐसे दूसरों को संहार करना ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए उस जगत में अवतरित थे, इसलिए पहले कंस को अघासुर बकासुर पूतना शेषी दैत्य दानवों का संहार किया। पीछे से द्वारका लीला में बहुत से लोगों का असुरों का ध्वंस किया, महाभारत के युद्ध में जो शेष बचे हुए थे उनका भी ध्वंस किया। पहले उन्होंने सुलहनामा करने की चेष्टा की, इसलिए दूत बन करके गए का जो युद्ध मत करो, युद्ध से युद्ध का फल कुफल होता है, इसमें ध्वंस होगा। दुर्योधन ने माना नहीं, मैं सात गांव इनको दो संतुष्ट हो जाएंगे, आधा का इनका भाग है आधा तुम्हारा है, तुम आधा ले लो, नहीं माना। अच्छा आधा मत दो, सात गांव दे दो। उसने कहा सुई के बराबर सात नोक की आई, एक नोक भी नहीं दे युद्ध से जो कुछ हो। अच्छा ठीक है, युद्ध के लिए तैयार रहो। कृष्ण उस समय में द्वारका में थे और अर्जुन जी वहां पर पहुंचे, महाभारत युद्ध होगा आप हमारे तरफ से लड़िए। दुर्योधन भी पहुंचा, कृष्ण की बात नहीं माना, हस्तिनापुर में उनको पकड़ करके जेल खाने में बंद करना चाहा, मारना चाहा, किंतु कर नहीं सका, भगवान को क्या कर सकता है। किंतु फिर भी उनके पास में द्वारका में गया। कृष्ण उस समय सवेरे 4 बजे सो रहे थे, अभी नींद से उठे नहीं है, जानबूझ करके ही सो रहे। दुर्योधन पहले था और पहुंच करके सिरहाने बैठ गया, सिर की तरफ पलंग पर, और अर्जुन पीछे गए तो वो बैठे पैर की तरफ में पलंग में, जहां पर पैर जिधर होता है जब दोनों बैठ गए थोड़ी देर के बाद में कृष्ण झट उठे, सिरहाने की तरफ नहीं देखा, अरे अर्जुन तू कब आया, कैसे आया? अर्जुन ने भी मुस्कुरा दिया, प्रभु मैं आपके लिए आया। इतने दुर्योधन से रहा नहीं गया, अरे प्रभु मैं इधर में बैठा हूँ, मैं आपके लिए आया। उन्होंने उनके तरफ में मुड़ करके कहा, किस लिए आए? ये सम्मानी व्यक्ति है और भगवान से भी सम्मान लेना चाहता है और उनका विरोध करता है, इसलिए मैं उसके पैर में बैठूंगा, ये तो हमारा अपमान हो जाएगा, इसलिए इधर में बैठा। और अर्जुन में दीनता है, इसलिए दीनहीन होकर के कृष्ण के चरणों की तरफ में बैठे। और जब उठा तो पहले अर्जुन को देखा, इसको देखा नहीं। ऐसे ही जो दीनहीन होकर के रहेगा वो भगवान की नजरों में आता है, और जो दीनहीन नहीं होकर के पाखंडी बदमाश बड़ा घमंडी होता है, रूप का घमंड, अर्थ का घमंड, विद्या का घमंड और उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड, भगवान की दया उस पर नहीं होती, भगवान को मानते भी नहीं है। इसलिए जो इतना होने पर भी दीनहीन होता है, भगवान का स्मरण करता है, उस पर भगवान की कृपा होती है। दुर्योधन ने कहा, प्रभु ये नहीं, मैं तो पहले आया, हमारी बात तो सुनिए। अच्छा अच्छा बोलो तो किस लिए आया? उसने कहा कि महाभारत युद्ध होने जा रहा है, आप हमारे तरफ से चल करके लड़िए अपनी सेनाओं के साथ। अर्जुन से पूछा, भाई तुम किस लिए आए हो? तो मैं भी इसीलिए आया। तो भाई देखो, दुर्योधन पहले आया ना, तो हाँ भले ही मैंने देखा पहले ही अर्जुन को, किंतु अर्जुन जब ये आया तो इसका मांगने का अधिकार है अधिक, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, धनुष बाण चक्र इत्यादि नहीं उठाऊंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तुम हमको लेना चाहे तो लो, एक तरफ में मैं हूं निहत था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और दूसरे में तरफ में हमारी कितनी लाख करोड़ सेनाएं हैं, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सारे सेनापति हैं, एक तरफ ये है, दोनों में से किसको लेगा तुम ले लो, तो आप लड़ेंगे नहीं तो नहीं, सेनाएं लड़ेंगी तो हाँ लड़ेंगे, तो हमको ये सेनाएं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं। वो खुश होकर के चला गया, उन्होंने उनको विदा कर दिया, सेनाएं उनके साथ में गई, बड़े बड़े वीर लोग गए, सेनापति गए, बहुत घोड़े सुसज्जित होकर के सेनाएं कुछ कर दी। अर्जुन से कहा, देखो तुम तो अब हार गया, तुमको तो ऐसे ही मैं मिला, मुझे लेकर के तुम्हें क्या लाभ होगा, क्या करेगा? प्रभो हमको, मैं तो यदि आपको यदि वो ले लेता है और अस्त्र शस्त्र सारी सेनाएं देता तो मैं तो उसी समय प्राण प्रत्याग कर देता, मुझे उसकी जरूरत नहीं। आप हमारे मन के रथ के ऊपर में बैठ करके मुझे चलाएंगे, वैसा चलूंगा, हमको आपकी दीवता की और इस कप की जरूरत नहीं है। आप जहां हमारे मन के ऊपर में सारथी हुए उसमें मेरी विजय निश्चित है। कृष्ण को लड़ने की जरूरत है, वो तो इच्छा करने से ही सब कुछ हो जाए। देखो यहाँ दुर्योधन था ना, दुष्ट विचार वाला असुर, इसलिए कृष्ण को नहीं लिया। अरे ये कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र के ही विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, एक सेकंड में उसका ध्वंस कर देते हैं, फिर सृष्टि कर देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनको क्या जरूरत है अस्त्र शस्त्र धारण करने की? इसलिए कृष्ण को यदि अपने मन के रथ के ऊपर में बैठा दिया जाए और उनके आदेश निर्देशों का पालन किया जाए तो ये संसार रूपी युद्ध यात्रा में हमारी जय निश्चित है। जहां पार्थ धुरंधर हैं धनुर्धारी और जिसके रथ के ऊपर में कृष्ण सारथी हैं और धर्म जिनके साथ है, जिसके ध्वजा पर हनुमान है, जो धर्म के पालन करने के लिए कटिबद्ध है, युद्ध का जय भी उन्हीं के तरफ में होगा, अवश्य ही विजय श्री भी उधर ही जाएगी। कृष्ण ने ये देखा यदि इन अस्त्रों का पराभव नहीं होता तो धर्म तो लुप्त हो जाएगा। ये लोग वेद विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध बातें कर रहे हैं, माता पिता का आदर नहीं करते, स्त्रियों का आदर नहीं करते, जो जहां से पाता है उसी का सब कुछ लूट लेता है। ये जगत तो नष्ट हो जाएगा, रक्षा करने वाले कृष्ण हैं, इसके लिए इसको हमको जाने की जरूरत है, इसलिए इस युद्ध की आवश्यकता है। देखो कैसे पांडवों को रक्षा करते हैं। जब युद्ध चल रहा था, बिशप पितामह जी सेनापति थे, उनको कोई मार नहीं सकता, इच्छा मृत्यु थी, और प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को वो मार गिराते। यदि वो 10 दिन 15 दिन यदि युद्ध करे 18 दिन तो सभी को खत्म कर दे। पांडव ने कहा बड़ी मुश्किल। दुर्योधन ने कहा प्रभु आप मन से लड़ते नहीं, जरा मन से लड़िए हमारे साथ और आप जो कुछ कह देंगे वो हो जाएगा। आप ये बात कह दीजिए ये तुम्हारी जय होगी और पांडव लोग हार जाएंगे। कहे मैं ये कैसे कहूं, तुम अपनी पत्नी को रात में हमारे पास में भेज देना, मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा। ठीक है, क्या आशीर्वाद देंगे, ये सौभाग्यवती भव, तुम्हारा पति कभी नहीं मरे और जब नहीं मरेगा तो तुम्हारी जय हो गई। तो ठीक, जब रात हुई आधी रात, सोचा आज अपनी पत्नी को लेकर के मैं खुद रथ पर चढ़ा करके और वहां पर ले जाऊंगा, भीष्म पितामह से ये वरदान दिलवा दूंगा और हमारी जय हो जाएगी। उस दिन रात में बड़ी जोर से मूसलाधार वर्षा होने लगी, बड़ी जोर से। तो उसने सोचा कि आज क्या यह है, अब कल करा लूंगा, आज ये वृष्टि में मूसलाधार वर्षा में आज जाने की जरूरत नहीं है, मेरी स्त्री बीमार हो जाएगी और मैं भी न जाने क्या होगा, नहीं अंधकार का समय, आज रहने दो, कल सवेरे कल हम रात में चले। कृष्ण को इस बात का पता था, उन्होंने द्रौपदी से कहा जे बेटी द्रौपदी, सखी द्रौपदी, अभी चलना है, कहां चलना है, भीष्म पितामह से क्या करना है। अरे भीष्म पितामह जी प्रतिज्ञा किए हैं जो वो मारेंगे पांडवों को, इसलिए जाकर के तुम वर मांगो, तुम वर मांग करके आना, तुम अपने मुख में घूंघट उतार करके जाना और अपने को छिपा करके जाना। आज दुर्योधन की पत्नी को वहां जाना था किंतु वर्षा हो रही है इसलिए वो नहीं गया, वो कहता है कल करो सो, आज करो सो कल, और कल करो सो परसों, आप क्यों खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है परसों। और पांडवों की नीति क्या है, काल करो सो अब,
आज करो,
आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करो। अच्छा काम कोई कल के लिए मत रखो, तुरंत करो, बुरा काम है उसको सोच करके करो, उसके लिए टाल दो। ये विद्वान लोग बुद्धिमान लोग ऐसा करो, तो इसलिए तुम चलो और तुम ऐसा भान करना कि उसी की पत्नी मानो आ रही है, उसको वो भर देंगे। बस वो तैयार साथी साथ हो गई और वो कृष्ण ने उसे रथ पर बिठाया और वो बिठा करके मूसलाधार पानी और उसी में पहुंच करके भीष्म पितामह जी के भवन पर पहुंची और कृष्ण रथ में यहां पर बैठ गया, उसको आवश्यक बातें बतला दी, घूंघट उतार करके, और भीष्म पितामह जी ध्यान रखते भगवान के ध्यान में, कृष्ण के ही ध्यान में वो जाकर के बैठ गई घूंघट उतार करके। जब उनका ध्यान खुला तो कहिए अरे तू आ गई, उन्होंने समझा भानुमती, भानुमती तू आ गई, जाओ तुम सौभाग्यवती भव, और तुम्हारा अखंड अखंड सतीत्व तुम्हारा रहे, तुम्हारा पति मरे नहीं, विजय तुम्हारी हो। बस इतने में उसने घूंघट उठा दिया, मुस्कुराने लगी, अरे तुम द्रौपदी, अरे बेटी तू कैसे आ गई, तुम्हारे साथ में कोई है, जरूर कोई होगा, वो दूसरा नहीं हो सकता, वो कृष्ण सामालिया ही होगा, तुमको लेकर के आया है।
वो जिसको रक्षा करना चाहता है विश्व में उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, और जिसका वो बिगाड़ना चाहता है उसका कोई समस्त विश्व में करके रक्षा करके भी कुछ नहीं कर सकता, उस पर तुम्हारी कृपा है, तुम्हारे ऊपर में उसकी कृपा है। जाओ सौभाग्यवती, फिर से उन्हें दोबारा उसको
अखंड
सौभाग्यवती भव। इस तरह से कृष्ण देखो कैसे करते हैं, कैसे उनको बचाते हैं पांडवों। ये तो कृष्ण का कृष्ण समदर्शी है, किंतु भक्तों के लिए समदर्शी नहीं है, सबके लिए समदर्शी है, किंतु जो भक्त अपना हृदय और सर्वस्व कृष्ण के चरणों में दे दिया है उसके लिए समदर्शी नहीं रहते, उसका वो पक्षपात करते हैं। जो सूर्य के सामने जाएगा उसको सूर्य रोशनी देते हैं, ये पक्षपात नहीं है। और जो घर के अंदर में बैठा रहेगा कबाट बंद करके उसको सूर्य अपनी रोशनी कैसे देंगे, ये सूर्य का पक्षपात नहीं है। ठीक ऐसे ही जो भगवान की सेवा करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान से सब प्रकार से रक्षा करता है। तो ये कृष्ण कैसे करते हैं, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई और उस समय अर्जुन ने कहा मैं ये देखना चाहता हूं कि दोनों सेना में हमसे लड़ने के लिए कौन आए हैं, आप हमारा रथ बीच में ले चलिए। कृष्ण ने कहा जी अच्छी बात, प्रेम से भगवान वश में हो जाते हैं, कहां भगवान की सेवा होनी चाहिए अर्जुन की ही सेवा कर रहे हैं, ये इनका प्रेम है, प्रेम से कृष्ण सभी कुछ कर सकते हैं, भक्तों की चरण की सेवा करते हैं, उनका जोग और क्षेम बहन करते हैं, जो चीज नहीं है उसको भी दे देते हैं और जो है उसकी रक्षा भी करते हैं कृष्ण। तो अर्जुन को रथ लेकर के बीच में स्थापित किया, अर्जुन ने बीच में जाकर के देखा गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म पितामह जी एक तरफ में अभिमन्यु अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, अर्जुन और पांडवों के पांचों पुत्र छोटी छोटे अभी 15-16 वर्ष के बच्चे, और दूसरी तरफ में उनका उनके बहन का पति जयद्रथ और ऐसे ऐसे सब जितने भी हैं अपने बंधु बांधव ही सब दोनों तरफ में देखा। ओह ये राज्य के लिए सब मरेंगे और मैं इनसे लड़ूंगा मारूंगा, मैं युद्ध नहीं करता, इस युद्ध के लिए लाखों लोगों को मारना पड़ेगा, मैं रक्त से सना हुआ ये राज्य नहीं लूटा लेना चाहता, इसके बदले में मैं भीख मांग करके खाऊंगा वो ठीक है, दूसरों के घरों में एक रोटी का प्रश्न के लिए हम ये मारना नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे। कृष्ण उन्हें उनको उपदेश देते हैं, पहले ही श्लोक में ये आया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्वा माम काश्चैव पांडवा किम अकुर्वत् संजय। हे धृतराष्ट्र जी बैठे हुए हैं राजभवन में हस्तिनापुर में, वहां से कम तो 150-200 माइल दूर कुरुक्षेत्र, वहां पर युद्ध हो रहा है। आजकल हरिद्वार जाने में, दिल्ली से हरिद्वार जाने में एक मुजफ्फरनगर पड़ता है, उस मुजफ्फरनगर के पास ही में कुछ दूर भीतर में जाने पर वहां पर गंगा बहती है, उसी के किनारे में हस्तिनापुर, और कुरुक्षेत्र दिल्ली से इस तरफ में दूसरे उल्टी दिशा में कम से कम तो 150-200 माइल दूर, करीब करीब 200-250 माइल दूर, और वही संजय अपने धृतराष्ट्र के पास में राजभवन में बैठे हैं, और इधर में दोनों सेनाएं एकत्रित हुए बीच में अर्जुन जी खड़े। किम अकुर्वत संजय, तुम बतलाओ वहां पर क्या हो रहा है, दोनों हमारे बेटे, मेरे बेटे और पांडव लोग दोनों युद्ध क्षेत्र में एकत्रित हैं, किस लिए, युद्ध करने के लिए, कहां जीते हैं, धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, वहीं पर जीते हैं, क्यों पूछा, इसके पहले मैं बतलाता हूं धृतराष्ट्र जो हैं अंधे हैं, स्वार्थ बस अंधा, वो आंखों से भी अंधे, बुद्धि से भी अंधे। उनको सीधे साधा चाहिए था, जैसे हमारे पुत्र हैं, ये पांडव भी हमारे पुत्र हैं। किंतु वो कहता कि नहीं, हमारा पुत्र जो हमारे पुत्र हैं और वो जो हैं पांडव लोग, वो लोग क्या किए, उनको अपना नहीं कहता। वो कहता कि मेरे भतीजे हैं, ये कहता। किंतु उसने कहा नहीं, क्यों, स्वार्थ बस। जो लोग ऐसा भाव रखते हैं, ये अपना है, ये पराया है, भाई उनका ध्वंस अनिवार्य है, यही अंधापन है। इतने स्वार्थी, जो उनका हक था उनको देना चाहिए, किंतु नहीं दे रहा, अपने बेटों का पक्ष ले रहा है। उनको मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया लक्षा गृह में। लाख का लाख समझते हैं, लाख का भवन बनाया गया। लाख कहते हैं जिसे चूड़ियां होती है ना, लाठी, लाख का उसे चूड़ियां बनती है। चूड़ियां मैंने वो मोटी मोटी, गल जाता है आग में और जल जाता है, उसी का घर बनाया। किंतु पांडवों को जो कृष्ण रक्षा करते हैं वो मरेंगे। बीस का लड्डू दिया, उनकी पत्नी को नंगी करके सबके सामने अपमान करने की चेष्टा, किंतु इसने प्रतिकार नहीं किया। जाए ऐसा मत करो, वो भी चाहता था कि ये मर जाए तो हमारे बेटे को पूरी संपत्ति मिल जाए। ये लोग अंधे हैं, आगे की बात को नहीं जानते, इनका सर्वनाश होता है। उनका सर्वनाश नहीं होता कि ऐसे रहते, इनका सर्वनाश होता है, इसलिए इनको अंधा बतलाया। एक तो अंधे, और वहां से भी कितनी, 300 माइल 250 माइल दूर संजय से पूछ रहे हैं कि तू बतलाओ कि वहां पर क्या हो रहा है। संजय कैसे जानते हैं, ये संजय से धृतराष्ट्र ने कहा, मैं महाभारत को युद्ध होगा, मैं समझ रहा हूं जो होगा, किंतु मैं देखना चाहता हूं, कई बातें जानना चाहता हूं उसी समय में, जैसे अभी कहां क्या हो रहा है ना, पेपरों में झट देख लेते हैं, आज यहां ये हो रहा है, यहां वहां हो रहा है, या देख दूरदर्शन से हम उसे देख लेते हैं अभी तुरंत। उन्होंने कहा कि हमको ऐसे ही चाहिए, उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया संजय को, आपको नहीं होगा, आपकी बुद्धि कुटिल है, जिसकी बुद्धि सरल है इसलिए इसमें निर्मल हृदय में दिव्य ज्ञान हो सकता है, और जिसकी बुद्धि कुटिल है, स्वार्थी है, जो दुष्ट हृदय का है, उसमें ये दिव्य ज्ञान नहीं है, इसे तुमको तो नहीं होगा, किंतु ये जो संजय तुम्हारा जो मंत्री है, तुम्हें जो अच्छी बातें बतलाता है, सलाह देता है, इसको दिव्य ज्ञान होगा। ये यहीं पर बैठ करके महाभारत का सारा युद्ध देखेगा और तुमको बतलाएगा क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है, किसका विनाश हुआ, किसका क्या हुआ। इसलिए वहां पर बैठे हुए जब अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं और उन अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से इन सब बातों को, वो सब भी देखता है और सुन भी रहा है वहीं से, इतना भी ये दिव्य ज्ञान। पहले लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे, पुष्पक विमान पर भी विश्वास नहीं करते थे, अब जब ऐसी सब दूरदर्शन इत्यादि आया, अरे हाँ हो सकता है कि वो महाभारत की बातें सब सत्य, सभी बातें शास्त्र की सभी सत्य हैं, विज्ञान जिस दिन उन्नत होगा उस समय समझेगा। अभी तक विज्ञान इतना उन्नत हुआ, किंतु आत्मा क्या चीज है, परमेश्वर क्या चीज है, इसको नहीं बतला। मरने के बाद में क्या होता है, आत्मा क्या होती है, कैसे निकल जाती है, बहुत चेष्टा की इन सब बातों को जानने के लिए, किंतु नहीं जान सकते। ये बुद्धि के द्वारा जागृत नहीं होगा, ये भगवान की कृपा से होता है, साधन के द्वारा ऐसा हो सकता है। इसलिए उसका हृदय निर्मल नहीं होने के कारण दिव्य ज्ञान नहीं पा सका, नहीं दे सका। और इधर ये संजय जी जो उनके अमात्य थे, मंत्री थे, वो देखने लगे और जैसी जैसी घटनाएं रहे उनको ये बतला रहे। अब यहां पर कहते हैं ये बातें जो अभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये कौन कह रहा है, व्यास देव जी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं देखो फिर राष्ट्र को ये कहने की क्या जरूरत थी, ये बतलाओ जब युद्ध करने के लिए आए तो युद्ध करेंगे ही, पूछने की बात क्या थी। वो सोचता है ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म स्थान है, हो सकता है धर्म के प्रभाव से, क्षेत्र के प्रभाव से उसकी दुष्टता खत्म हो जाए और दुर्योधन इत्यादि के विचारों में भी कुछ साधुता आ जाए तो वो कहने वो हो सकता है, कहते अच्छा भाई आ रहा राज्य ले लो, अब लड़ाई करने की जरूरत, ऐसा तो कहीं नहीं हो गया। यदि ऐसा हो गया तो ये बहुत खराब था, क्योंकि वो चाहता है कि युद्ध में पांडवों का विनाश हो और हमारे लड़के ही सब कुछ ले लें। दुष्ट लोगों का ऐसा ही होता है। इसी चीज को ये दिखला रहे हैं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि पांडव लोग तो बड़े धार्मिक हैं और धर्म स्थान में गए हैं, तो वो यदि कहेंगे भाई जी राज्य के लिए हम लड़ेंगे नहीं, ये सब राज्य कौरवों का ही हो जाए और वो वहां से छोड़ करके चले आए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? संजय जी कहते हैं इसके उत्तर में सबसे तकरार है, ये सब बातें उसके अंदर में छिपी हुई है। संजय जी उसकी बात को समझ गए, मैं देखो भाई युद्ध तो अवश्य होगा, दुर्योधन का मन इधर उधर बदलना बड़ा भारी कठिन है और उधर कृष्ण चाह रहे हैं युद्ध हो और असुरों का विनाश हो, इसलिए अब वो आगे की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा और धृतराष्ट्र को ये बतला रहे हैं। ये सुनकर के धृतराष्ट्र को बड़ी सांत्वना हुई, बहुत अच्छी बात है, धर्म के क्षेत्र से इन लोगों का विचार बदल गया, अब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, अब तो सारा राज्य हमारे बेटों को मिलेगा और मैं भी जब तक जीवित रहूंगा बड़े आराम के साथ में हमारी जीवन, भविष्य की बातें नहीं समझ सका क्योंकि ये अंधा है। अंधा आंख से अंधा से नहीं होता, अंधा विचारों का अंधा ही अंधा है। स्वार्थी लोग, दुष्ट लोग, असुर लोग, ये सब अंधे हैं जो उनको दो अंगुल की बात नहीं दिखाई पड़ती, अपने स्वार्थ में ऐसे लिप्त हो जाते हैं उनको कोई भी बात नहीं दिखती। जैसे शराब पीने वाला, वो अंधा है कि आंख वाला है? अंधा है। माता पिता की जो सेवा नहीं करते वो क्या है? अंधे। जो भगवान को नहीं मानते वो अंधे। जो दूसरों का सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं, अपने कुछ साधारण एक लाभ के लिए दूसरों लाखों को मरवा देते हैं, जैसे आजकल प्रधानमंत्री और सब लोग दूसरे देशों में राष्ट्रपति अपने विरोधियों की हत्या करा देते हैं, ये क्या है? ये सब धृतराष्ट्र के अवतार अंधे। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, अपने घर में स्वार्थ मत रखो, अपने भाई का भी बेटा है अपने बेटे के समान समझो, सबको अपना समझो, ये प्रभु के सभी दास हैं, तब तो शांति रहेगी। और जहां स्वार्थ आया तथा अंधे हो गए, इसी में विनाश होता है। अब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों भाई? ये पुरुष लोग सारे जितने हैं ये मारे जाएंगे, जब मारे जाएंगे तो स्त्रियां क्या होंगी? विधवा। विधवा होने पर क्या होगी? स्वतंत्र हो जाएगी, इनके पुत्र होंगे, वर्ण शंकर होंगे, धर्म को जलांजलि दे देंगे, धर्म कर्म नहीं मांगे, ईश्वर नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, सच्चे पथ पर नहीं चलेंगे, अपने पूर्वजों को अंजलि प्रदान करना इत्यादि साथ ये नहीं करेंगे, उसे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और कुल धर्म नष्ट होने से क्या होगा? सभी कुछ नष्ट हो गया और अंत में उनका विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं मानता। कृष्ण ने देखा ये इस विषम स्थिति में अर्जुन को ये मोह हुआ, ये ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं अरे तू मूर्ख होकर के और बुद्धिमानों की बात कहता है, अस्वच्छान अन्न सोचत संग प्रज्ञावादांश भाष से गताशु न निर्मल हो जाएगा। कुछ ज्ञान होगा तत्व तो ज्ञान, जीव किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इसीलिए दूसरे अध्याय में ये सांख्य योग की बातें बतलाई, किंतु इसका बहुत विचार गंभीर क्या है, धीरे धीरे भगवान उसको बढ़ाते 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 अपनी भक्ति के तरफ में ले जाते हैं। इसलिए अपने लिए जो कर्म किया जाता है उसको कहते हैं कर्म, और जो कर्म भगवान के लिए करते हैं उसका योग भगवान से होता है, इसलिए कहते हैं कर्म योग। इस चीज को समझो, जगत में जो ज्ञान हमारा है, ये कैसे पानी, पानी कैसे बनता है, वैज्ञानिक लोग विश्लेषण करके बतलाते, ये पेड़ पौधे कैसे होते हैं, बाग बगीचे बनाना, घर बनाना और सब बातें, एक वंशित पद चलता है कैसे, इसको कहते हैं ज्ञान। किंतु जो ज्ञान भगवान का सहायक होता है और भगवान के लिए करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान योग। और जब तक भगवान के साथ में संपर्क नहीं होता वो ज्ञान कहलाता है। वैसे ज्ञान और कर्म से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसी चीज को समझाने के लिए अर्जुन को वो कहते हैं जत करोषि जदस नासी जज्जुहोषि ददासि तत् तपस्या कौन्तेय पुरुष समर्पण। जो कुछ भी करो भगवान को अर्पण करो, रसोई बनाओ अर्पण करो, जो भी कर्म करते हो भगवान को अर्पण करो, इससे तुम्हारा चित्त पवित्र होकर के भगवान के तरफ में बढ़ेगा और तत्व ज्ञान लाभ करके ये संसार क्या है समझ सकोगे और तब भक्ति योग के द्वारा सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर, अपने को भी समर्पित कर दे। गीता का यही चरम उद्देश्य। इसलिए अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हमारे शरण। यदि कुछ इसके लिए बुरा फल होगा तो मां सुचा सोच मत करो, मैं सब पापों को दूर कर दूंगा, ऐसा ये गीता में उन्होंने कहा। इसलिए गीता की बातें को हमको समझनी चाहिए। जितना वेद वेदांत उपनिषद है सबका ये सार गीता है।